ओम शांति। जैसे हम अंदर हॉल में आए तो बहुत अच्छे मेमोरीज इमर्ज हुए, जब भी खुद को भट्टी में रखते हैं, अपने लिए रखते हैं, अपने को टाइम देते हैं बाबा के साथ, और जो बातें रिजॉल्व नहीं हुई है वो रिजॉल्व हो जाती है, उसका समाधान भी निकलता है, क्योंकि साइलेंस में बैठने का बहुत ही फायदा होता है। पिछले की जो भट्टी चली, कम से कम हम 4 घंटा योग करते थे मिनिमम दिन में, तभी जाकर के योग का रस बैठता है। हम समझते आधा घंटा 40 मिनट योग करे अच्छा योग था, फिर तुरंत एक्शन में चले जाते हैं, वो रस इतना नहीं बैठता है। और बाबा ने भी बताया है कि मिनिमम, चलो बच्चे 8 घंटा ना करे लेकिन 4 घंटा तो चाहिए, तभी वो जो अंदर का जो बाप और बच्चे के बीच में जो अनादि रस है, संबंध का रस है, वो खींचता है। आज जैसे हम ऊपर आ रहे थे तो मैं इतना सुंदर, मैं प्रकृति को देख रही थी, नेचर को देख रही थी, और आज का टॉपिक जो दिया है उद्धार मुहूर्त आधार मुहूर्त स्वमान के हिसाब से, तो मैंने देखा कि आधार बनना माना क्या और उद्धार करना माना क्या। सपोर्ट एक नेचुरल होता है, आधार पिलर एक सपोर्ट होता है, लेकिन कभी अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करता है कि मैं सपोर्ट करता हूं। देखो इतने बड़ा हॉल को सपोर्ट करता हूं, इतना बड़ा घर को सपोर्ट करता हूं। आधार मूर्त बनना है तो टोटल प्यूरिटी चाहिए, महपन का विनाश चाहिए। आप नेचर को देखो, वही वृक्ष होता है, वृक्ष थोड़ा रास्ते के ऊपर आता है, छाया देता है, जब ये पत्ते से भरा हुआ होता है तो कितना सुंदर दिखता है, और खुद गाड़ी को छाया देता है, हम जब पैदल जाते हैं तो हमको भी छाया देता है, तो नेचर से हम सपोर्ट लेते हैं। लेकिन जब वही वृक्ष में पत्ते नहीं होते हैं तो क्या वो वृक्ष बोलता है, सॉरी मैंने आपको समर में छाया दिया, अभी विंटर में नहीं दे सकता। जो है जैसा है वैसा है, और आखिर उस वृक्ष के उस समय चलो पत्ते नहीं काम करते हैं, लेकिन जो जड़ के जो रूट्स है वो तो आखिर सॉइल को पकड़ के बैठती है ना माउंटेन में, देखो तो सारा पूरा लैंडस्लाइड होता। तो हमारे अंदर में भी कई ऐसी विशेषता है जो टाइम अनुसार सीजन अनुसार प्रत्यक्ष होती है। एक अंदर की एक बीमारी होती है सूक्ष्म मैपन का, के मुझे कोई देखे, मैंने ये किया, मुझे ये करना है, किसी ने मुझे रिकॉग्निशन नहीं दिया है। ये जो बीच में महपन जो आता है अटेंशन का, वो मेरी विशेषताओं को प्रत्यक्ष नहीं करने देती है, क्योंकि रेवलेशन या प्रत्यक्षता एक नेचुरल चीज होती है, टाइम अनुसार सीजन अनुसार होता है सब कुछ। और बीच में हमारा जो मैं मेरापन का रुकावट आता है, वो जो नेचुरल चीज है वो नहीं होने देती है, हम बीच में इंटरफियर करते हैं, खुद का एजेंडा होता है ना। बहुत सालों से दादी के साथ रह करके नेचुरल पुरुषार्थ क्या है वो हमने दादी जानकी से सीखा है। कभी भी दादी से हमने देखा नहीं कुछ काम चलाओ, चाहे संबंध व्यवहार में काम चलाओ या चाहे किसी को ऊपर ऊपर से खुश करने के लिए कुछ करे, कभी ऐसे नहीं देखा। जो रियल बात उस समय इमर्ज होती है उस पे ही दादी जी एक्ट करती है। और प्यूरिटी माना क्या, क्योंकि नेचर में प्यूरिटी कितनी है, नेचर की प्यूरिटी के आधार तक लास्ट तक अभी भी हमको कितना दे रही है नेचर। और इसकी प्यूरिटी देखो, इसका कोई कंपैरिजन कंपटीशन चलता है आपस में, ये झाड़ एक झाड़ दूसरे झाड़ के, नहीं नहीं तुम बड़ा हो मैं छोटी और तुम मुझे थोड़ा जगह दो ना। वो क्या कहते हैं क्रीपर्स जो सारे वॉल पे चढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं, वो होता है ना जो वॉल पे चढ़ता है, हाँ मुझे सुनाई नहीं देता है, वेल, हाँ वो जो चढ़ता है, तो वो कभी भी तो थोड़ी इसको बोलता है तुम क्यों मेरे पर चढ़ते हो, वो तो झाड़ पे भी वृक्ष पे भी चढ़ जाता है, पूरा हप कर लेता है। तो आपस में देखो कितनी हार्मनी है, क्योंकि इनका काम एक ही काम है, मुझे सूर्य के तरफ जाना है, जहां पे लाइट है वहां के तरफ जाना है। आप देखेंगे आप पौधे को विंडो सिल पे डालेंगे, जहां से लाइट आएगा तो उस तरफ मोड़ेगा, राइट, फिर आप थोड़ा उसका पोजीशन टर्न करेंगे तो उस दूसरे तरफ मोड़ेगा, सीधा हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है, प्यूरिटी माना मैं जो हूं जैसी हूं वैसी हूं, बाप की हूं और मुझे बाप के तरफ ही मोड़ना है कुछ भी हो जाए। फिर आप जानो आपकी ड्रामा जाने, मेरा आपसे कोई लेन देन नहीं है, और आप अपना पार्ट बजा रहे हो, मेरा तो नुकसान नहीं हो रहा है, मेरा नुकसान मैं तब महसूस करूंगी जब मेरापन होता है। लेकिन जो ड्रामा में हो रही है बात वो तो होगी, ऊपर वाला बैठा है, ड्रामा का एक एक्यूरेट प्ले है, जो हो रहा है वो बैलेंसिंग एक्ट है, तो उसके बीच में नुकसान क्या। ड्रामा इज परफेक्शन। जब ये बात ड्रामा की फिट हो जाती है ना, तभी कोई भी बात में प्रश्न नहीं उठता है। और हमने इस दादी जी में ये बहुत देखा है कि ड्रामा दादी की बेस्ट फ्रेंड थी, रियली। और जो भी दादी जी करते थे दिन में, वो ऐसा देखती थी कि किसी को कोई व्यर्थ संकल्प दादी के कर्मों द्वारा ना पहुंचे। इतनी बड़ी दादी फिर भी जब भी बाहर जाती थी तो रिसेप्शन पे छुट्टी लेके जाती थी, मैं जाओ मैं यहां जा रही हूं, मैं इतने टाइम के लिए जा रही हूं, और फिर थोड़ा सा भी उस टाइम लेट होंगे ना तो हमसे फोन करवाएंगी, फोन करो ताकि इनका संकल्प ना चले कितना देर तक दादी आएंगी वापस। सूक्ष्म बात है ये। चलो हम सभी योग में बैठते हैं और बस हम समझते उठ बैस करता रहे, कोई एक दो व्यक्ति को तो डिस्टर्ब होता है ना। तो ये जो प्रकृति के साथ फ्रेंडशिप रखना, माना यू नीड टू बी सेंसिटिव कि धरती को भी कोई नुकसान ना आवे। वो परदादी थी ना तो कहानी बताती थी कभी कभी, वहां इंद्रप्रस्थ में परदादी का कमरा था नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहां पे एक दिन रुक्मिणी बहन जी, थर्सडे सतकुरार का दिन था तो बाल कैसे कंघी डाल रही थी, तो थोड़ी बहुत बाल नीचे गिरे तो परदादी उस समय आई, देखा, बोला, अरे बहन ये बाल भी नुकसान कर सकती है। कैसे? ये छोटी छोटी चकले आती है, ये बाल इनके छोटे छोटे पैरों में फंस जाएंगी, वो उड़ नहीं पाएंगी, फिर क्या होगा? अरे कौन इतना तक सोचेगा, आप सोचो। क्योंकि जो प्रभु प्रिय है ना, वो प्रकृति प्रिय है, दोनों का गहरा संबंध है। क्योंकि बाबा और ड्रामा, बाप और मां है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ बाबा के साथ अच्छा संबंध है, लेकिन जो हम कार्य करते हैं वो प्रकृति को नुकसान मिल रही है। बिना सोच के जल्दी 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 कर किया, एक्सीडेंट किया, वो हुआ। रियल जो प्रभु प्रिय होता है ना, एक एक कदम का ध्यान रखता है। और जब भी हम दादी को देखते थे ना, कमरे को सुनाई नहीं देता था कि दादी आई है, कभी भारी चप्पल नहीं होता था। और मैंने देखा कि दादी जी खुद के लिए बहुत केयरफुल रहती थी, औरों के लिए बहुत केयरिंग रहती थी। खुद के लिए कैसे केयरफुल? हम देखते थे उनकी दवाई लेने के समय, ऐसे जल्दी जल्दी कभी दादी ने दवाई नहीं ली है। चाहे 10 लोग सामने बैठे हो, चाहे 20 लोग, चाहे 100 लोग बैठे हैं, बस ये हाथ में टोली मिली है, प्रसाद जैसे लेती थी मुख में, एक एक करके साइलेंस में एक गुटरा पानी, दूसरा एक गुटरा पानी। इतनी रॉयल्टी से रहती थी दादी। तो ये जो धारणाएं है, रॉयल धारणाएं है, यही हमको आधार मुहूर्त, उद्धार मुहूर्त बना देती है। क्योंकि एक होता है आधार बनना, उसके लिए स्टेबिलिटी बहुत चाहिए, और वो स्टेबिलिटी, स्थिरता आपको इस दुनिया में नहीं मिलेंगी, आपको मूल वतन में मिलेंगी। जब आपकी स्मृति मूल वतन में टकी हुई होंगी बहुत समय से, वो जैसे जीरो स्टेट जो कहते हैं हम, जीरो, उस साइलेंस की स्थिरता में बहुत लोगों का फायदा होता है। बुद्धि चलती नहीं है, बिल्कुल चलती नहीं है, जीरो। स्पेस में क्या कहते हैं, वो ब्लैक होल कहते हैं ना, सब कुछ खा जाता है, ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? जीरो ग्रेविटी है, हब कर लेता है सब कुछ, विनाश कर लेता है सब कुछ। इसलिए हमारी निराकारी स्थिति, जीरो स्थिति है। फिर हम जहां भी जाएंगे, माया रावण का विनाश जरूर होगा उस समय, वो कुछ हमारे ऊपर वार नहीं कर सकता है। तो मैंने ये बहुत देखा कि दादी में, दादी का जो अशरीरी विदेहीपन का अभ्यास था, बहुत ही जबरदस्त था। क्योंकि दादी ने कभी कभी अंदर बाहर अलग अलग रूप दिखाई नहीं दिया था, जो आप बाहर देख रहे थे वो अंदर सेम थी। बीच बीच में रुक करके अपने आप को इतनी डीप साइलेंस में लेके जाती थी, हम देखते थे, हम आजू बाजू में फटफट फटफट करते थे, वो अपना काम कर लेती थी। भोजन के समय भी आप दादी को देखो, सेम साइलेंस में। हम आपस में बातें करते रहते हैं, वो अपना साइलेंस में काम करती रहती है। तो मुझे क्या करना है? मैं क्यों संगठन में आकर के मैं अपना फोकस गवा दूं? मेरा जो काम है सूर्य के तरफ जाना, बाबा के तरफ मोड़ना, मैं क्यों वो काम छोड़ दूं किसी के संस्कार स्वभाव के कारण? मैंने किसी का संस्कार स्वभाव देखा, माना मेरा परचिंतन शुरू हो गया। और जब परचिंतन शुरू होता है, तभी स्व चिंतन ओम शांति, और जो स्व को करना है वो भी ओम शांति। अब प्रैक्टिकल रूप में देखो, जैसे कोई व्यक्ति रास्ते पे चलता है उसको अपना डेस्टिनेशन मंजिल आंखों में दिखाई देता है कि मुझे यहां जाना है, तो फोकस होती है आंखों में और वाइब्रेशन भी पहुंचता है कि ये व्यक्ति यहां से यहां जा रहा है, उसका कोई मिशन है, उसको आपको फीलिंग आती है। तो फोकस रूप में चलता है तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे जल्दी, ये जा रहा है बस चलो इसको छोड़ दो। लेकिन जो व्यक्ति के पास मंजिल नहीं है बुद्धि में आंखों में, तो क्या करेगा? हाँ ये कितना अच्छा है ऐसे ऐसे करेगा तो आपको वाइब्रेशन है, चलो इस बंदे को पकड़ो, आप इस बंदे के रास्ते में चले जाएंगे, उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे और फिर खुद वो ही कंप्लेन करेंगे, अरे मुझे जाना था ना वहां, तो ये बीच में आप क्यों आ गए? अरे कहां जाना था आपको भैया? आपने दृढ़ संकल्प रखा था मंजिल की तरफ? तो हम ही हमारे आदतवश हम अपने रास्ते पे विघ्न डालते हैं। कोई विघ्न नहीं डालता है क्योंकि हमारे वाइब्रेशन से ही सब कुछ होता है। ये थोड़ी गहरी बात है। आपका थोड़ा सा बुद्धि का फोकस कम, आप देखेंगे तुरंत दो चार बातें सामने आ जाएंगी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन जितना आप सुबह के टाइम सीट पे बैठ करके अपने आप को सेट करेंगे, मंजिल को क्लियर रूप में बुद्धि में रखेंगे, आप देखना सारे दिन में आप अपना कार्य पे फोकस रहेंगे, जो इसको करना है करने दो, वो फीलिंग ही नहीं आएंगी कि ये इंटरफियर हो रहे हैं, फीलिंग आएंगी ही नहीं। तो उस समय जब ही हमको फीलिंग आती है, डिस्टर्ब होते हैं, तो हम अपना नहीं देखते हैं, हम औरों का देखते हैं, हम अपनी बुद्धि की स्थिति को नहीं देखते उस समय कि मैंने मंजिल छोड़ा, मैंने डेस्टिनेशन छोड़ा, मैंने बाप की स्मृति छोड़ी, तभी ये हुआ। तो अभी का समय ऐसा है, कभी भी बहुत लोग हमको पूछते हैं, दीदी क्या ये विनाश का समय शुरू हुआ है? मैंने बोला अभी नहीं, अभी ये जो पाप का घड़ा थोड़ा ओवरफ्लो हो रहा है ना, उसका सेटलमेंट हो रहा है, कर्म बंधन का सेटलमेंट हो रहा है फास्ट स्पीड पे, क्योंकि खाली होके जाना है घर, कुछ अकाउंट बकाउंट लेके नहीं जाना है। और अभी का अभ्यास एक ही अभ्यास है, जीरो बन जाओ, अपने आप को बिठा करके बाप के साथ बैठो और पूरी बुद्धि को जीरो बना दो। कोई भी एक चीज बुद्धि को पुल न करे या अट्रैक्ट न करे, ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप दृढ़ संकल्प लेकर के बैठेंगे ना, आप देख थोड़े समय के बाद वो जो पुराने संस्कार का खींच होता है, पुरानी सोच या आदतों की विचार, पुराने विचारों की जो खींच होती है वो खत्म हो जाएंगी और फिर बाप का खींच, बाबा आपको खींचेगा। जब तक आपने अपने आप को न्यूट्रल नहीं बनाया है ना, तब तक आपकी गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए योग का बहुत महत्व है। तो इसमें हमने दारी को पूछा था एक बारी, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से, पहले हमको एक वैराग्य वृत्ति बनानी है। जब वैराग्य का वृत्ति पैदा होता है, तभी आप अपने आप को योग तपस्या में बिठा सकते हो और फिर योग के समय उपराम वृत्ति, जितना उपराम जाएंगे उतनी अंदर आत्मा की शक्ति और भरेंगी और आत्मा बुद्धि का पांव स्थिरत रहेगा, क्योंकि साइलेंस में स्टेबिलिटी है। तो एक बारी हमने दादी को पूछा कि दादी आप, हम आपको बहुत बारी देखते हैं, आपके पास एक विधि है उपराम जाने की, आप क्या करते हो? अब बैठ करके कैसे उपराम जाते हो? तो दादी ने 5 स्टेप की विधि बताई थी हमको। पहला, वो खुद को कर्मेंद्रियों से डिटैच करती है। जो बाहर की तरफ ध्यान गया है उसको अंदर खींच लेती है, कर्मेंद्रियों से कॉन्शियसली डिटैच होती है। फिर दूसरा स्टेप, न्यारापन महसूस करना कि मैं, मेरी पूरी एनर्जी मैंने खींच ली अंदर, सार रूप में बना दिया और मैं अपने आप को एक न्यारी प्यारी आत्मा समझती हूं। इस शरीर से न्यारी हो गई हूं, अभी न्यारी और प्यारी, एकदम एक मीठी सुंदर एनर्जी। और फिर उसके बाद भ्रुकुटी के सिंहासन पे बैठ के मैं साक्षी पन की स्थिति में बैठी हूं, साक्षी हो जाती हूं, सीन में हूं, साक्षी की सीट पे बैठी हूं। फिर और ही अंदर चले जाओ तो साक्षी दृष्टा हो जाता है, जैसे आप देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो, अब बल हो वो सीन में लेकिन विटनेस, दृष्टा, साक्षी दृष्टा, बिल्कुल अंदर। और फिर और ही अंदर चले जाओ तो जैसे आंख कान सब कुछ बंद हो जाता है और आप प्राण चले जाते हो, अशरीरी बन जाते हो। मैंने बहुत बारी इस विधि को लेकर के प्रैक्टिस किया है, बहुत फायदा मिला है। घड़ी घड़ी बीच में डिटैच, न्यारा, साक्षी, दृष्टा, उपराम। इतना मजा आता है इसका। और जो ये यहां पे जो चक्कर फिरता है, परिस्थितियों का चक्कर, स्वभाव संस्कार, उसे हम सेफ रहते हैं, सेफ रहते हैं। और फिर अनेक चीजों के लिए, अनेक सेवाओं के लिए हम निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि हम सेवा स्किल के आधार से नहीं होती है, स्थिति के आधार से होती है। और जितनी उपराम स्थिति होंगी इतनी आपकी बेहद की सेवा होगी। आप स्किल्स द्वारा सेवा करेंगे वो हद की सेवा है, उपराम स्थिति में होंगे वो बेहद की सेवा। एक ही संकल्प जा करके क्या कहेंगे, प्रभाव डालेंगे। नहीं, एक बारी क्या हुआ था, पता नहीं कौन सा समय थे, राजू भाई बता रहे थे एक्चुअली कि कोई प्रेसिडेंट या कोई मिनिस्टर आने वाला था, लेकिन उसके सिचुएशन में ऐसा था कि यहाँ पे लोकल ऑफिशियल्स, पुलिस वाले ने बहुत सारा प्रोग्राम बना दिया था। वो चाहते नहीं थे कि वो मिनिस्टर ब्रह्मा कुमारी के संस्था में आवे, तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया, ये वहां जाएंगा, वो जाएंगा, वो जाएंगा। तो आधा घंटा का टाइम दिया था पांडव भवन के लिए। बहुत मेहनत की थी हमारे भाई लोग ने, तो थोड़े ऐसे प्रॉब्लम्स भी हुए थे उस समय जिसमें उसकी आने का भी संभावना नहीं होती थी, ऐसे प्रॉब्लम्स थे। तो उस समय दादी जी ने क्या किया, दादी जानकी की बात है, इंद्रप्रस्थ में अंदर रूम में कमरे में रात को चली गई, लॉक कर दिया, सारी रात योग किया। फिर नेक्स्ट डे वो भाई जब एयर स्ट्रिप पे पहुंचे, मिनिस्टर, हमारी बीके बहने तो वहां स्ट्रिप पे थी, खड़ी थी, और बाकी लॉ वाले पुलिस ऑफिसर वगैरह वो भी थे। उसका उसका प्रबंध किया था ब्रेकफास्ट मिनिस्टर कॉटेज में, फिर वहां जाना था, कहां पे वो कौन सा मंदिर, दिलवाड़ा पे जाना था, वहां जाना था। तो जैसे प्लेन से उतरा सीधा ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास गया, और जैसे ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास गया, बोला अच्छा मुझे कहाँ है आपकी गाड़ी, मुझे लेके चलो। पुलिस वाले हैरान हो गए, अरे हमने भाई साहब आपका प्रोग्राम बनाया है, कहाँ जा रहे हो? तो कहते मुझे केवल ब्रह्मा कुमारी इसके संस्था में ही जाना है, मुझे और कोई जगह नहीं जाना है। उसको लेके आए, फटाफट दीदी का कमरा खुलवाया, वहां पे उसको फ्रेश कराया, खिलाया। कम से कम 2-2.5 घंटा तो संस्था में ही बैठे रहे, कोई और जगह पे नहीं गए। फिर उसके बाद जैसे पूरा हुआ, कहते मुझे सीधा एयर स्ट्रिप लेके जाओ। और फिर एक दो दिन के बाद बाबा जब आए, तो बाबा को बताया गया था, तभी बाबा ने बोला था, इस बच्ची ने जो रात को तपस्या की थी, उस व्यक्ति के ऊपर लाइट का घेराव डाल दिया था, उसको वहां से वही फीलिंग आती है कि मैं लाइट में आ रहा हूं, मुझे लाइट को मिलना है, इसलिए वो सीधा बाबा के घर पे आया। अभी आप भी लाइट का ऑर्ब में बैठो और बाबा का आह्वान करो। उद्धार मुहूर्त, किसी की सेवा करनी और किसी का उद्धार करना, रात दिन का फर्क है। रात दिन का फर्क है। क्योंकि किसी का उद्धार करना माना पुण्य कर्म का खाता में जमा करना, लेकिन आपके पास डबल माल होना चाहिए आपके लिए और ऑपोजिट व्यक्ति के लिए। किसी की कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करना, कितना प्यार चाहिए। जो व्यक्ति गिरा हुआ है उसको अपनी गिरावट को महसूस न कराना और प्यार दे करके उसको आगे बढ़ने की शक्ति देना उद्धार मूरत का काम है। एक बारी क्या हुआ था, दादी जी जब विदेश में आए थे तो ऐसे कोई रेडीमेड हैंड्स तो कोई नहीं थे, कोई सामान वाला भी नहीं था दादी के पास। दादी ने एक एक को पालना दे करके आप सामान बनाया है। तो इसमें से काफी ऐसे ग्रुप था माताओं का जो दादी जी देशों में भेजती थी किचन को संभालने के लिए और उनको ट्रेनिंग। तो इसमें से एक माता थी, तो उसको कोई देश में भेजा गया था सेवा के लिए, थोड़ी डिस्टर्ब होके वापस आई। वापस आई तो एक दिन दादी के साथ बैठ करके उसने बहुत कुछ बोला, बहुत गुस्से में भी थी तो बहुत अंदर दिल में भरी हुई बातें थी वो बाहर निकल रही थी, दादी को भी थोड़ा दोषी बना रही थी उस समय, और हम तो साइड में बैठे थे, इतना बोला नहीं है। तो मैंने कभी इस माता को इस रूप में नहीं देखा है, तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा इसको क्या हो गया है। तो वो अपना बोल करके तो चली गई, दादी ने कुछ नहीं बोला उस समय, फिर सिर्फ सुना। नेक्स्ट डे वो माता क्लास में नहीं आई, दादी ने नोट किया। क्लास के बाद मुझे बोला ये माता क्लास में क्यों नहीं आई है। मैंने बोला दादी पता नहीं है, मैं जांच करती हूं। तो मैंने फोन किया तो पता चला कि उसकी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, और मैं समझ गई वो जो पिछले दिन जो किया हुआ होगा वो असर आ गया होगा मन पे शरीर पे। तो मैंने दादी को बोला दादी कहती है इतनी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आज सवेरे क्लास में नहीं थी। तो दादी ने बोला अच्छा एक घंटे में मुझे उसके घर पे लेके जाओ, लेके चलो। मैंने बोला अरे दादी आपके पास इतने सारे मीटिंग्स हैं, वो कल आएंगी ना क्लास में, आपको क्यों जाने की दरकार है, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो उसके घर जाने के लिए। दादी ने मुझे बोला देखो उसने जो भी भूल गल की है दादी उसको इतना प्यार देना चाहती है कि वो भूल भी उसके दिमाग से मिट जाए, इसको कहेंगे उद्धार मूरत। दादी तो खुद भूल गई लेकिन दादी का प्यार इतना उसको देना था कि वो भी भूल जाए कि उसने क्या बोला था दादी को, वो भी खुद भूल जाए, इसको कहेंगे उद्धार मूरत। अभी आप में इतना स्टॉक जमा है, बाबा का प्यार का स्टॉक इतना जमा है, जो आप खुद पुरानी बातों को भूल सकते हो लेकिन औरों से भी भूलवा सकते हो। प्रैक्टिकल बात है, जो उद्धार मूरत होगा ना उसको वो जल्दी जो प्योर इंटेंशन है किसकी वो सच्चे सोने को परख लेगा। एक बारी क्या हुआ, यहां पे एक बुजुर्ग माता आकर के खड़ी रही थी गेट पे। मैं समझती हूं वो लेबर माता थी, उसके कपड़े ऐसे थे, उसको सिक्योरिटी अंदर आने नहीं दे रही थी। उसके हाथ में कुछ वो एक पोटला था ना, जो हैंकरचीफ होती है ना उस पे कुछ डाला था, बैठी रही बाहर। और फिर एक घंटा दो घंटा लेकिन उसको आने नहीं देते थे अंदर। फिर दादी जी जब बाहर आई थी, और थोड़ा दादी उस समय वॉकिंग भी करती थी बीच बीच में, तो वॉकिंग के समय उसको देखा, और जो दादी के साथ बहन थी, चलो चलो दादी चलो चलो चलो, वो तो आएंगे बाद में, लेबर की माता है कोई हर्जन, चलो चलो। दादी थोड़ा कदम आगे बढ़कर के फिर ऐसे मुंह मोड़ा के इसको बुलाओ यहां पे, अभी बुलाओ मेरे सामने बुलाओ, और हमको अंदर भेजा टोली लेने के लिए, ब्लेसिंग लेने के लिए। वो माता जब अंदर आई ना तो इतनी खुश हो गई थी, दादी के पैर छुई, फिर उसने जो पल्लू साड़ी का पल्लू में जो उसने रखा था उसने खोला, पता था क्या था उसमें? कॉइन्स, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए की एक मुट्ठी थी उसके साड़ी के पल्लू में। इसने दादी को बोला, दादी मैं ये यज्ञ के लिए लेके आई हूं, मैंने बर्तन धुलाई करके ये कमाई की है, मुझे बाबा के यज्ञ में डालना है। आप सोचो उस समय दादी ने कितना प्यार किया होगा उसको। लेकिन उस समय दादी ने उसको इग्नोर नहीं किया था ना, एक वाइब्रेशन पहुंचा है कि ये आत्मा कुछ बाबा के लिए लेके आई है। चलो कॉन्शियसली तो वो नहीं संकल्प आता है, फीलिंग तो आती है ना। तो आप जितना बाबा का सच्चा प्यार खींचेंगे, आपको वही सच्चाई औरों में दिखाई देंगी, और उसको रिटर्न देने में बाबा आपको निमित्त बनाएगा। कितना प्यार किया था दादी ने उसको। मेरे तो उस समय आंखों में तो आंसू आ गया था कि देखो इस भोली भाली माता, जो सारा विश्व इसको इग्नोर कर रहा है, दादी ने इसको ध्यान दे करके, देखो इसके हाथ में क्या निकला। और जो इसके मुट्ठी में था वो एक महल बराबर था, उसने इतना प्यार से बाबा को यज्ञ में दिया था। तो बाबा ही हमको उद्धार मूरत बनाता है, किसी का उद्धार करने के लिए वो वाइब्रेशन पहुंचता है इस व्यक्ति के पास कुछ बाबा के लिए है। ध्यान देना चाहिए, ध्यान वहीं तरफ चले जाता है। ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल नहीं होता है। मैं आपका उद्धार कर रहा हूं, मैं आधार मूरत बन रही हूं, ये नहीं है। ये सब कुछ बाबा ही करा रहा है। तो ऐसे ऐसे जब हमारे सामने एग्जाम्पल्स होते हैं तो सूक्ष्म रीति से सीखने को बहुत मिलता है कि हमको एक सच्चा सेवाधारी बनना है तो बाप के साथ रहना मैंडेटोरी है। एक मिनट में बाप का संग छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी बाप का संग छोड़ेंगे ना तो आप उस माता को इग्नोर कर देंगे। ऐसा होगा, सूक्ष्म बात है ये। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स तो बहुत है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी दादियां, बड़ी दादी भी, चंद्रूबेन की स्टोरी मुझे भी याद आ रही है कि जब शुरू शुरू में ट्रेन में सफर कर रहे थे, और वो चंद्रूबेन सैन फ्रांसिस्को वाली, वो दादी जी के साथ बॉम्बे जा रहे थे, तो ट्रेन में जगह नहीं थी सोने के लिए। बैठने की तो जगह थी, लेकिन सोने के समय एक व्यक्ति के लिए जगह नहीं थी। तो दादी जी तो थोड़ा 1-2.5 घंटे लेटी, फिर उठ करके दादी जी सामान के ऊपर बैठी और चंद्रूबेन को सुलाया 4 घंटे के लिए। अभी ये कौन करेगा? अंदर से एक प्यार भरी भावना आपको ये कार्य कराएगा नेचुरल रूप से, और ये प्यार मिलता है कहां से? वो मां से, बाप से। जब प्यार की कमी होती है ना, तभी हम अपने आप को आइसोलेट महसूस करते हैं। बस हम अपना ही पुरुषार्थ करें, किसी और को देखना है नहीं है। और वो जो कनेक्टेडनेस की भावना होती है, उद्धार करना है, मैं सेवाधारी हूं बाप की, और बाबा मैं अवेलेबल हूं, वो मिस हो जाती है। तो इस भट्टी में जो भी बात आप और बाप से दूरी करने वाली है, बात आप और बाप के बीच में जो भी ऐसी बात है जो आपको बाप से दूरी करती है, उसको मिटानी है। ये मैंने दादी को पूछा था एक बारी, दादी प्लीज मुझे अपनी वीकनेस सुनाओ, मेरी वीकनेस मुझे बताओ। हिम्मत चाहिए हाँ ऐसे बोलने के लिए। फिर दादी ने मुझे जवाब दिया, मैं क्यों तेरा काम करूं? सही बात है, उसका काम थोड़ी है मेरा वीकनेस ढूंढने का। तो फिर मैंने दादी को बोला, अच्छा आप मुझे बताओ मैं अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरी को कैसे महसूस करूं? तो दादी ने यही जवाब दिया, साइलेंस में बैठो, देखो कौन सी ऐसी बात अभी भी रही हुई है जो आपको बाप से दूर करती है। अभी आपके पास टाइम है, ये एकांत में बैठ करके आप नोट करो, महसूस करो, क्या है, क्या अभी भी रहा हुआ है मेरे और बाप के बीच में जो मुझे इतना कंबाइंड स्थिति का की अनुभूति नहीं होती है, नजदीकपन की अनुभूति नहीं होती है। उसको ढूंढो और उसको मिटाओ। फिर लास्ट में हमारी अंतिम घड़िया रियली एक बाप दूसरा नहीं कोई कहूंगा, क्योंकि हम धोखे किस आधार से खाएंगे, हमारी कमी कमजोरी से आधार से, वही माया का रास्ता हो जाता है हमको धोखे खिलाने के लिए। और हमारा काम सिर्फ इतना ही है उसको महसूस करना, महसूस करके बाबा के सामने रखना, उसके प्रति वैराग्य की वृत्ति रखनी है, बस इतना ही काम, बाबा और सब कुछ कर लेगा। लेकिन मुझे थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के देखना है, महसूस करना है। तो हम कहेंगे कि ये लॉकडाउन के समय में हमारा सौभाग्य है कि हमको इतना टाइम मिला है अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। अभी खुला मैदान है, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो, आप जो बनना चाहते हो बन सकते हो। अभी आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये टाइम क्यों दिया है ड्रामा ने, पूरी एक्सक्यूज और कंप्लेंट को खत्म करने के लिए। फिर लास्ट में जब हम धर्मराज पूरी से पास होंगे और पूछेंगे हमको कि आप संपूर्ण संपन्न क्यों नहीं बने, एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, ऐसे ही गेट खुलना चाहिए ऑटोमेटिक ऊपर जाने के लिए। ठीक है, चलो 5 मिनट हम आपको 5 स्टेप की, जो मैंने उपराम वृत्ति की जो स्टेप्स बताए उसके ऊपर हम 5 मिनट योग करते हैं, फिर उसके बाद आपको 10 मिनट ब्रेक मिलेगा। देखो कहां गया टाइम, पता चला आपको? 45 मिनट हुए, पता चला आपको? हमको भी पता नहीं चला, इतनी अच्छी अच्छी बातें निकली। शरीर के लिए 1-2 श्वास, गहरा श्वास ले लो, पूरा पेट भर के श्वास ले लो, और जैसे आप श्वास छोड़ो तभी उस समय जो भी टेंशन भरा हुआ है शरीर में उसको श्वास द्वारा निकालो। अभी हम अपना ध्यान अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, बाहर से अंदर, और इन कर्मेंद्रियों से डिटैच हो रहे हैं। और जैसे मैं अपनी एनर्जी को अंदर लेके जाती हूं, एकाग्र होती रहती है। ये सारे कर्म इंद्रियों के दरवाजा बंद हो रहे हैं। और मैं आत्मा इस मंदिर रूपी शरीर में, मैं एक न्यारी प्यारी ज्योति बिंदु आत्मा, शरीर से न्यारी, और फिर अपनी भ्रुकुटी के सिंहासन धारण करती हूं, साक्षीपन की सीट पे बैठती हूं। फिर और ही अंदर चली जाती हूं और साक्षी दृष्टा बन जाती हूं। देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, बाहर की दुनिया बहुत दूर लग रही है, और जितना मैं अंदर चली जाती हूं, साक्षी दृष्टा के पास उपराम, अपने घर में पहुंच जाती हूं, बिल्कुल अशरीरी बन जाती हूं। बाबा के साथ समाई गई हूं, स्थिति की स्मृति में हम वापसी इस धरती पे आते हैं। एक आधार मूर्त बनके और उद्धारक मूर्त बनके, ओम शांति। शांति।